हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। और कहीं ना कहीं करिश्मा जी को वो याद आने लगा था, जब अमन शुरुआत में एकदम अहंकारी और ज़िद्दी आदर्शवादी किस्म का था, तो करिश्मा जी को उसमें अमरेंद्र जी की झलक दिखाई दिया करती थी, क्योंकि तब अमरेंद्र जी भी अपनी जवानी में बिल्कुल अड़ियल और एकदम निडर किस्म के इंसान थे। करिश्मा जी की शादी दादा महाराज और करिश्मा जी के पिता की रजामंदी से हुई थी, लेकिन शादी से पहले ही अमरेंद्र जी करिश्मा जी से मिलने के लिए जिन्नतों की दुनिया के नियमों को तोड़ते हुए वहाँ उनके पास पहुँच गए थे। और इतना ही नहीं, शादी से पहले ही उन्होंने करिश्मा जी के साथ प्यार करते हुए रिश्ता बना लिया था, क्योंकि वो कभी भी अपने पिता के किसी भी नियम को नहीं माना करते थे। हालांकि जिन्नतों की दुनिया में बिना शादी के प्यार करना बहुत बड़ी और गलत बात मानी जाती थी, लेकिन उस वक्त अमरेंद्र जी नए नए जवान हुए थे, उनके ऊपर जवानी का जोश चढ़ा हुआ था, इसीलिए उन्होंने कभी भी अपने पिता दादा महाराज की बात नहीं मानी थी। और जैसे ही उन्हें ये पता चला कि उनकी एक बड़ी ही खूबसूरत जिनके साथ उनका रिश्ता तय हो गया है, तो वो बहुत खुश हो गए थे और सिर्फ करिश्मा जी से मिलने के लिए वो उनके पास पहुँच गए थे। करिश्मा जी तो अच्छी तरह से समझ चुकी थीं कि ये कौन है। पहले तो करिश्मा जी ने उन्हें साफ साफ मना कर दिया था, लेकिन उन दोनों में एक शर्त लग गई थी। वो शर्त थी कि कौन सबसे ज़्यादा देर तक एक दूसरे का मुकाबला कर सकता है और कौन किससे जीत सकता है। क्योंकि वो दोनों ही जिन थे और उनमें असीम शक्तियाँ थीं, तो उन दोनों में जल्दी ही एक मिशन युद्ध शुरू हो चुका था। और उस युद्ध में बार बार बीच बीच में करिश्मा जी का जिस्म अमरेंद्र जी के जिस्म से टकरा रहा था, और करिश्मा जी के दिल में अब धीरे धीरे गुदगुदी सी पैदा होने लगी थी, और उनका दिल भी अब अमरेंद्र जी को पाने के लिए करने लगा था। इसीलिए उन्होंने जानबूझकर हारते हुए अमरेंद्र जी की बात मान ली थी, और जल्दी ही वो दोनों एक दूसरे में एक हो चुके थे। उन दोनों के एक होने के बाद जिन महाराज ने उसी पल ही उन दोनों की शादी करवा दी थी। तो करिश्मा जी को कहीं ना कहीं आज ये सारी बातें याद आ गई थीं, लेकिन आज अपने उस निडर और साहसी पति को इस तरह से झुकता हुआ देखकर करिश्मा जी का दिल कटरे कटरे हो गया था। कहीं ना कहीं करिश्मा जी उस वक्त अपने बेड पर जा बैठी थीं, लेकिन आज इतना ज़्यादा बुजदिल और इतनी ज़्यादा टूटा हुआ इंसान देखकर करिश्मा जी को बहुत बुरा लग रहा था। जल्दी ही करिश्मा जी आगे बढ़कर अमरेंद्र जी को उठाया और कहने लगीं, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो आप कहेंगे मैं वही करूँगी। बस इसके बदले में आपको मेरी एक बात माननी होगी, आपको मुझे मेरा पुराना वही अमरेंद्र जी लौटाना होगा, जो हर तरह का टकराव करने के लिए तैयार रहा करते थे। मुझे मेरे वही अमरेंद्र जी दीजिए, जो बिना किसी दुनिया के बिना किसी नियम की परवाह करते हुए मेरे साथ प्यार किया करते थे। करिश्मा जी की बात सुनकर अमरेंद्र जी की आंखों के आगे भी अपनी पिछली जिंदगी के कुछ पन्ने उलट आए थे और उन्हें सब कुछ याद आ गया था। लेकिन अब वो एक बाप थे जो एक मजबूर बाप बन चुके थे, और कहीं ना कहीं उन्हें ये गुनाह खाया जा रहा था कि उनकी वजह से एक काली शक्तियों की औरत की जिंदगी बर्बाद हो गई थी, और साथ ही साथ उनके साथ रिश्ता बनाने से जो औलाद पैदा हुई थी वो एक इंसान औलाद थी और अनाथ आश्रम में पलने के लिए मजबूर हो चुकी थी। तो कहीं ना कहीं इस गुनाह के चलते वो अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। करिश्मा जी की ऐसी बात सुनकर उन्होंने कहा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं पहले जैसा बन सकूं। उनकी बात सुनकर करिश्मा जी आगे बढ़कर उन्हें गले से लगा लिया। वहीं दूसरी ओर काली शक्तियों का मालिक अमित एक जगह खड़े होकर अमन के बंगले को चारों तरफ से देखने लगा था और मन में सोचने लगा था कि बस एक बार उसे कुछ तो कुछ ऐसा मोमेंट क्रिएट करना होगा जिसके बाद अमन पूरी तरह से कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि अमन का दिल कमज़ोर होते ही वो अपने जिस्म के दानव को उसके अंदर प्रवेश करवा देगा और उसके बाद वो दानव वही करने वाला था जो कि अमित चाहेगा। तो कहीं ना कहीं ये सोचते हुए वो जोरों से हंसने लगा था। वहीं दूसरी ओर मालिका बहुत ही ज़्यादा खुश थी, क्योंकि एक तो उसे अमन के पास रहने का मौका मिल रहा था और ऊपर से काली शक्तियों के मालिक अमित अपना दानव जैसे ही अमन के जिस्म में प्रवेश करा लेगा तो वो उसके पास जाकर उसके साथ रिश्ता बनाएगी। और अब तो उन्हें ये लगने लगा था कि उनका ये प्लान पूरा होकर ही रहेगा, और वैसे भी उनकी नज़रों में तो अमन की बीवी तो एक इंसानी बीवी थी और इंसानों को कैद करना, इंसानों को बहलाना फुसलाना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। कहीं ना कहीं ये बात वो दोनों अच्छी तरह से जानते थे। तारा धरा को लेकर जल्दी ही एक कमरे में आ गई थी। तारा ने जानबूझकर धरा को अपने ही कमरे के बराबर वाला कमरा दिया था ताकि धरा को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना आए। धरा को कमरे में लाने के बाद तारा ने धरा को बिस्तर पर बैठने के लिए कह दिया था और बड़े ही ध्यान से वो धरा की ओर देखने लगी थी। धरा का जिस्म पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो चुका था। पहले लास्ट टाइम जब तारा परी धरा से मिली थी उस वक्त धरा की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा खराब थी। क्योंकि एक एमएलए के बेटे ने उसे अपनी हवस का शिकार बनाने की कोशिश की थी, लेकिन आज धरा काफी अलग और पतली हुई सी लग रही थी। तब तारा को समझने में देर नहीं लगी कि इसके ऊपर काली शक्तियों का जादू हो चुका है, जिसकी वजह से ये ऐसी हो गई है। अब तारा ने थोड़ी देर धरा को देखने के बाद उसे कहा था कि उसे किसी भी चीज की जरूरत हो तो वो तारा को बताएं, क्योंकि तारा धरा के बारे में सच जानना चाहती थी, लेकिन वो सीधी सीधी तरीके से उसे कुछ नहीं पूछ सकती थी। वो ये बात अच्छी तरह से जानती थी। अगर उसने सीधे तरीके से धरा से कुछ भी पूछा तो धरा को जिसने भी अपने वश में किया हुआ है वो ये सारी बात समझ जाएगा। तो तारा किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसीलिए उसने धरा से कहा था कि उसे जो कुछ भी चाहिए वो उसके लिए उसे बता सकती हैं, या फिर उस लड़की सोनल को बचा सकती है। तारा परी ने सोनल परी का नाम जानबूझकर सोनल ही रखा था, क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि अगर उसने सोनल की जगह किसी और का नाम ले लिया तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो सकती है, और वैसे भी वो तब उसके आसपास इंसान बनकर ही रहने वाली थी, तो इसीलिए उसने कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए सोनल का नाम सोनल ही रख दिया था और उसको किसी और का नाम नहीं दिया था। लेकिन मसला ये हो गया था, सोनल परी जो वेश लेकर वहां आई थी वो वेश लेकर वो अक्षत के यहाँ भी गई थी, तो कहीं ना कहीं उसे बस इस बात की थोड़ी सी प्रॉब्लम थी कि अगर अक्षत ने इस चेहरे के साथ उसे वहां देख लिया तो उसके बाद में कई सारे सवाल उठ सकते हैं, क्योंकि वो तो अक्षत के ऑफिस में एक नॉर्मल किसी और जॉब के लिए गई थी, लेकिन यहाँ पर वो वेडिंग प्लानर जॉब करने के लिए आई हुई थी। तारा ने मन ही मन में सोनल परी से बात करते हुए उसे कह दिया था कि वो धरा पर ध्यान रखें, क्योंकि तारा परी को पूरा का पूरा यकीन था कि अगर काली शक्ति के मालिक अमित ने उसे अपने वश में किया है तो वो उससे मिलने की कोशिश जरूर करेगा, क्योंकि धरा एक नॉर्मल मामूली इंसान थी और उसे अपने वश में करने के लिए जरूर काली शक्तियों के मालिक अमित ने उसकी कुछ खून की कतरों का इस्तेमाल किया होगा। लेकिन तारा को इस बात के बारे में कोई एहसास नहीं था कि तारा को अपने वश में अमित ने नहीं बल्कि मालिका ने किया था, तो इसीलिए सच जानने के लिए धरा पर सोनल परी को नजर रखने के लिए कह दिया था।
और अभी वो सोनल परी के कमरे से बाहर ही निकली थी कि तभी वो अमन से बड़ी ही बुरी तरह से टकरा गई थी, क्योंकि तारा परी ने धरा को जो कमरा दिया था वो अपने कमरे के ठीक बराबर वाला ही कमरा दिया था, और जैसे ही अमन तारा से टकराया वो उसकी आंखों में कितनी ही देर तक खोया रहा था और कहने लगा था, क्या हुआ है बेगम साहिबा, अगर आपको हमसे मोहब्बत ही करनी थी या टकराना ही था तो आप कमरे में ही आ जाती, इस तरह से हमें टक्कर मारने की क्या ज़रूरत है। जैसे ही अमन ने तारा को छेड़ा तो तारा के गाल एकदम से लाल हो गए थे और वो कहने लगी थी, आपको आखिरकार हो क्या गया है जिन महाराज, शायद आप भूल रहे हैं आप एक जिन महाराज हैं और आप सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी से ही फ्लर्ट करते रहते हैं। तारा की बात सुनकर अमन जोरों से हंस पड़ा था और कहने लगा था, क्या करूं, मेरी बीवी है ही इतनी ज़्यादा खूबसूरत कि उसको देखने के बाद दिल ही नहीं करता कि किसी और को देख लूं या कहीं और चला जाऊं। अमन की बात सुनकर तारा बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी। अमन की मोहब्बत में उसे ऐसा लगने लगा था मानो तारा हवा की सैर करने लगी हो, क्योंकि जब जब अमन पारा की तारीफ़ किया करता था उसे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुआ करती थी। जल्दी ही अमन ने तारा से कहा था कि उसे कुछ ज़रूरी काम है, वो उसके साथ कमरे में चले। तब तारा हैरत से अमन की ओर देखने लगी थी और कहने लगी थी, ये आप क्या कह रहे हैं कमरे में, शायद आप भूल रहे हैं कल रात से अब तक हम 2 से 3 बार मिल चुके हैं और आप क्या फिर से कुछ शायद करना चाहते हैं। तारा की बात सुनकर अमन हल्का सा उसके करीब आया था और उसकी गर्दन को चूमकर कहने लगा था, मेरा दिल तो करता है कि मैं पूरी रात और दिन तुमसे चिपका ही रहूं, लेकिन फिर अमन जल्दी से बोला था, मुझे वाकई तुमसे ज़रूरी काम है, तुम आओ मेरे साथ। ऐसा कहकर अमन तारा को अपने कमरे में ले आया था और कमरे में आने के बाद अमन ने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया था और तारा हैरानी से अमन की ओर देखने लगी थी और उसकी आंखों में कितने ही सारे सवाल थे, मानो वो पूछना चाह रही हो कि आपने तो अभी बोला था कि आप ऐसा वैसा कुछ नहीं करेंगे तो आपने कमरे का दरवाज़ा क्यों बंद किया। तभी अमन तारा की ओर देखकर कहने लगा था, देखो मुझे तुम्हें प्यार करने के लिए किसी बहाने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरी हो तो मेरी बीवी हो और अपनी बीवी को मैं जब मर्जी जब प्यार कर सकता हूँ। ऐसा कहकर उसने तारा के होठों को चूम लिया था और फिर अगले ही पल उन्हें छोड़ते हुए कहने लगा था, अच्छा अच्छा ये सब छोड़ो, ये देखो ये मैंने पूरी शादी की लिस्ट तैयार कर दी है, अभी इनमें से हमने कुछ शहर के नामी गिरामी लोगों को भी शादी में बुलाने का फैसला कर लिया है, और हाँ अमित के साथ मेरा क्या रिश्ता है ये बात हमने रिवील नहीं की है, और मैंने सिर्फ और सिर्फ एज अ फ्रेंड और कंपनी के मैनेजर अमित की शादी का ये इन्विटेशन सबको शेयर किया है, तो तुम एक बार इन सबकी लिस्ट चेक कर लो किसका नाम ऐड करवाना है किसका नहीं। ऐसा कहकर अमन ने बड़े बड़े अमीर लोगों इंसानों की लिस्ट तारा के हाथों में थमा दी थी। तब तारा कुछ सारी लिस्ट चेक करने के बाद बोली थी, लेकिन इसमें अक्षत खुराना का तो नाम ही नहीं है। तब अमन हैरानी से तारा की ओर देखकर कहने लगा था, अक्षत खुराना का नाम, शायद तुम भूल रही हो अक्षत ने तुम्हारे साथ किस तरह की बदतमीजी की थी, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसे यहाँ शादी में बुलाऊंगा। तभी तारा थोड़ा सा आगे बढ़कर अमन का हाथ पकड़कर बोली थी, शायद आप भूल रहे हैं अक्षत के अंदर एक दानव था और उसने जो कुछ भी उसे करवाया था उसे अपने वश में करके ही करवाया था। तो इस तरह से हमें अक्षत को जज नहीं करना चाहिए। और अगर हम इस शहर के सभी मशहूर बिजनेसमैन को शादी में बुला रहे हैं तो मुझे लगता है कि हमें अक्षत को भी ज़रूर बुलाना चाहिए। तारा की बात सुनकर अमन ने कुछ पल सोचा था और कहने लगा था, ठीक है, अगर तुम अक्षत का नाम ऐड करना चाहती हो तो कर सकती हो। ऐसा कहकर अमन ने तारा को इजाज़त दे दी थी और तारा ने जल्दी ही उस लिस्ट में अक्षत का भी नाम शामिल कर दिया था। जल्दी से तारा ने अमन के कहे के मुताबिक शहर के सभी बड़े बड़े बिजनेसमैन को शादी में आने का इनविटेशन दे दिया था, लेकिन उससे पहले उन्हें शादी के छोटे छोटे फंक्शन करने थे, जैसे कि हल्दी, मेहंदी, संगीत, ये सारे फंक्शन तो होने ही थे। तारा काफ़ी ज़्यादा खुश थी क्योंकि उसे पूरा का पूरा यकीन था कि शादी होने से पहले पहले वो अमित का सच अमन और अमरेंद्र जी को ज़रूर दिखा देगी।